हेलो, मैं हूँ कहानी वाली कुड़ी, लेकर आई हूँ जयंती रंगनाथन की लिखी कहानी खोल दो बंद दरवाजा। जब से सामने पड़ी खाली जमीन पर खुदाई का काम शुरू हुआ, मंदिरा का बड़बड़ाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। बेडरूम की बालकनी घर का वो कोना हुआ करता था जहाँ वो सारा दिन अधिकांश समय गुजारा करते थे। अब ये आलम कि दरवाजा खोलना भी मुश्किल। हर समय कमरे में धूल धक्कड़, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका गला ही घोंट के रख दिया हो। सुबह 10 बजे की चाय, नाश्ता, अखबार पढ़ना और फिर फुर्सत से गमलों को पानी देना, कपड़े सुखाना, शाम की चाय और रात को भी गर्म दूध या कहवा की चुस्कियां लेते हुए सड़क पार गाड़ियों को आते जाते तकना उसका प्रिय शगल था। पूरे घर में बालकनी उसकी अपनी जमीन थी और बालकनी में बिताया वक्त उसका अपना वक्त। अब सब कुछ जैसे खत्म। देखते देखते वहां ईंट गारे का काम शुरू हो गया, इमारत बनने लगी। जब देखो मजदूरों मशीनों का शोर। मंदिरा को इतनी कोफ्त इस घर में आने के बाद पहली बार हुए। गमले में रखे पौधे सूख गए, बालकनी पर पड़ी कुर्सी पर धूल की मोटी परत जमने लगी, कपड़े धोकर कहाँ सुखाए, ये भी एक किल्लत। किससे कहे ये सब? पति समीर तो जैसे ही उसका बड़बड़ाना चालू होता है मुंह बनाकर कमरे से ही बाहर निकल जाते हैं। मंदिरा की बातें उनकी समझ नहीं आती। एक बालकनी ही तो नहीं खोल पाते तुम, पूरा घर तो तुम्हारा है।
बेटा आयुष है 11 साल का, उसकी तो दुनिया ही अलग है। पिछले साल तक वो फिर भी स्कूल से आने के बाद मंदिरा से आधे घंटे गपशप कर लिया करता था। राशन सब्जी वगैरह लाने उसके साथ चल पड़ता था, पर अब कंप्यूटर और दोस्तों को छोड़कर उसके पास किसी के लिए फुर्सत नहीं। ऊपर से गुस्सा भी जल्दी आने लगा है, या शायद मंदिरा ही कुछ ज्यादा डांटने लगी है उसे। लेकिन आज शाम को ट्यूशन से वापस आया तो खुद ब खुद किचन में झांक कहने लगा,
मॉम आपको पता है सामने क्या बन रहा है? शॉपिंग मॉल।
मंदिरा के चेहरे पर कोई भाव ना पाकर उसने कुछ जोर से कहा,
शॉपिंग मॉल मम्मा, हमारे घर के बिल्कुल सामने मॉल, कितना मजा आएगा ना।
मंदिरा ने घूर कर देखा।
क्या मजा आएगा आयुष, वहीं घुसे रहोगे क्या?
क्या मजा आएगा आयुष, वहीं घुसे रहोगे क्या? आयुष ने उसकी तरफ ऐसे देखा मानो वो कोई अजूबा हो।
किसी भी बात पर खुश नहीं होती माँ, बस अपने कंधे उचकाकर वो चलता बना।
शॉपिंग मॉल, मंदिरा जितना सोचती उतना बौखला जाती। रिहायशी बिल्डिंग के बीचों बीच मॉल, क्या दुख है? अच्छी भली खाली जमीन थी, कुछ पेड़ थे, बच्चे खेल खाल लेते थे, अच्छी खुली हवा भी आती थी। पर उसके गुस्सा होने से भला क्या होना था? समीर टूर पर थे, लौटकर आए तो मंदिरा ने उन्हें मॉल वाली बात बताई। समीर ने जरा उत्साह से कह दिया,
अच्छा मॉल बन रहा है, चलो सही रहेगा, रौनक रहेगी।
रौनक? गाड़ियों की भीड़ नहीं? इन दिनों सड़क पार करना कितना मुश्किल होता जा रहा है, अब मॉल के आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा।
अपनी बालकनी के खोने के दुख से ज्यादा मंदिरा अब मॉल के बनने से द्रवित रहने लगी। बिल्डिंग में रहने वाली अड़ोस पड़ोस की महिलाएं खुश थीं। उन्हें लग रहा था कि शॉपिंग मॉल आने से उनके फ्लैट की कीमत बढ़ जाएगी, बोर हो रहे हैं, बिजली गुल है तो मॉल जाकर घूम आओ। अजीब किस्म की कुंठा थी, किससे जाकर सवाल करती कि यहाँ मॉल क्यों? समीर ने एक दिन सलाह दी,
तुम इस मॉल के चक्कर में कुछ ज्यादा नहीं उलझ रही?
मंदिरा बुदबुदाई, क्या करूं, खाली होना, तुम लोगों की तरह बिजी होती तो शायद।
किसने रोका है, कर लो ना काम, वैसे भी डॉक्टर भूषण का क्लिनिक अब अस्पताल बन गया है, तुमने सालों तक काम किया है उनके साथ, पता करो।
समीर ने जैसे उसे ताले की चाबी दे दी।
कल तक लगता था कि इस उम्र में फिर से नौकरी, सुबह की भाग दौड़ उससे नहीं होगा। अब लग रहा है कि नौकरी से कई समस्याएं सुलझ सकती हैं, बालकनी वाले भी। अगले ही दिन वो डॉक्टर भूषण से मिलने गई। 10 साल काम किया है उसने, उनका पैथोलॉजी लैब वही संभालती थी। डॉक्टर ने फौरन उसे काम पर रख लिया। घर और नौकरी संभालना आसान नहीं था, पर मुश्किल भी नहीं था। और कुछ सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं थी। सुबह 10 बजे निकलती तो शाम को 8 बजे घर पहुंचती। आते जाते बस घर के सामने बन रही इमारत पर नजर पड़ जाती। इमारत तेजी से बन रही थी। मैदान के पास मजदूरों ने रहने के लिए झोपड़ियां बना ली थीं। मंदिरा जब रात घर के सामने बस से उतरती तो मजदूरों को चूल्हे पर खाना बनाता पाते। औरतें मोटी मोटी रोटियां थापती और मर्द सामने खटिया पर लेटे बीड़ी पी रहे होते। बच्चे खाली बर्तनों को खड़खड़ाते हुए इधर उधर दौड़ते मिलते। बच्चों ने सड़क के कूड़ेदान पर पड़े लावारिस कुत्ते के पिल्ले पाल लिए थे। वे बच्चों के पीछे कूं कूं करके घूमते, आगे पीछे दौड़ते हुए सड़क पर भी आ जाते पिल्ले। फिर बच्चे उठाकर उन्हें झोपड़े के अंदर ले जाते। चूल्हे से उठता धुआं, हाथ से रोटियां थापती औरतें, ये सब अंदर तक पिघला देता था मंदिरा को। अब वो धूल धक्कड़ की बातें कम करती थी। घर लौटकर देर तक चूल्हे की आंच की तपिश में खोई रहते। समीर और आयुष भी शायद खुश थे कि मंदिरा अब पहले की तरह हर बात पर झगड़ा नहीं करती। लेकिन एक दूसरी लड़ाई चलने लगी थी मंदिरा के अंदर। अस्पताल में डॉक्टर भूषण ने मरीजों को देखने की फीस दोगुनी कर दी थी। मरीज के साथ अब पहले वाला अपनेपन का व्यवहार नहीं होता था। अस्पताल में काम करने वाले सभी तकनीशियों को हिदायत थी कि जो भी मरीज आए उससे कम 4 पैथोलॉजी टेस्ट करवाएं। जिन केसों में अल्ट्रासाउंड और ECG की जरूरत नहीं होती थी वहां भी करवाने का निर्देश दिया जाता। मंदिरा चकित थी। मरीजों से अब प्रोफेशनल व्यवहार होता था। अपॉइंटमेंट लो, फीस दो, कार्ड बनवाओ, फिर इलाज करवाओ। मंदिरा सोचती कि वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगी, पर अंततः ध्यान वहीं जाता। डॉक्टर भूषण अब पहले की तरह सबसे बात नहीं करते थे। वो अस्पताल के डीन थे और सिर्फ गिने चुने डॉक्टर से बात करते। बाकी का काम अस्पताल का CEO निपटाता। अपना काम करते हुए भी अब उसे लगने लगा कि यहाँ भी बालकनी का दरवाजा बंद हो गया है। ताजा हवा आने का कोई रास्ता नहीं, बल्कि यहाँ तो घुटन ज्यादा है। मंदिरा का मन अस्पताल जाने में कम लगने लगा, लेकिन इस समय नौकरी छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। अस्पताल में अपनी तरफ से वो कोशिश करती कि मरीजों को लाइन में ज्यादा देर तक ना खड़ा रहना पड़े। वो खुद उन्हें अनावश्यक टेस्ट लिख कर ना दे। इतने समय तक उसने क्लिनिक में काम किया था, पर उसे कभी ये नहीं लगा था कि बीमारियों का इलाज इतना दुरूह भी हो सकता है। रोज वो किसी न किसी ऐसे मरीज से मिलती जिसके पास कहने के लिए एक कहानी होती। 3 दिनों तक लगातार वो महाराष्ट्र की टीचर रोजी से मिली। 4th दिन अपने पास बिठाकर कॉफी पिला दिया। रोजी अपने बेटे के इलाज के लिए आई थी। रोजी तलाकशुदा थी, छोटी सी कमाई और खर्चे बड़े बड़े। बेटा जिस बस से स्कूल जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि 10 साल के लड़के ने स्कूल के सामने उतरने के चक्कर में संतुलन खो दिया और जबरदस्त घायल हो गया। मंदिरा भी दिन में 1-2 बार उसके साथ बेटे को देख आती। उसका बायां हाथ पूरी तरह कट गया था, प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। पर रोजी की शिकायत थी कि अस्पताल में डॉक्टर बहुत समय लगा रहे हैं। आखिरकार
रोजी को अपने बेटे की प्लास्टिक सर्जरी करवाए बिना ही अस्पताल छोड़ना पड़ा। मंदिरा का दिल अब बैठने लगा था। जहां देखो वही बाजार। इस बाजार में जो खरीददार बनना नहीं चाहता उसके लिए कोई राह नहीं। इस बीच उसे एक दिन डॉक्टर भूषण से मिलने का मौका मिला तो उसने रोजी के बेटे के बारे में बात की। डॉक्टर ने उसका चेहरा देखा, फिर रुक कर बोले,
मैडम आपको मैंने शायद कभी बताया नहीं कि ये अस्पताल बनाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। ऐसे ऐसे नेताओं के पास जाना पड़ा जिन्हें शायद मैं कभी अपने घर क्या दफ्तर बुलाना भी पसंद नहीं करता। मेरा सपना था एक अस्पताल खोलना, पर ये भी दूसरों की नजरों में एक बिजनेस है। मैं भी मानता हूँ कि हमें भी बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ता है, पर आप जिस बच्चे की बात कर रही हैं उसे मेरे पास लेकर आइए। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम कीमत में उसका इलाज हो जाए।
मंदिरा की आंखों के कोर में आंसू की एक बूंद ठहर गई। रोजी के लिए वाकई ये बहुत बड़ी बात होगी। उस दिन अस्पताल से निकली तो मन हल्का हल्का था। अब गुस्सा कम आ रहा था। घर के बाहर बस स्टॉप से उतरी तो नई बन रही बिल्डिंग के नीचे मजदूरों को मजमा जमा कर गाते बजाते देख दिल को तसल्ली सी पहुंचने लगी। एक मजदूर ऊंची आवाज में बेसुरा गा रहा था और दूसरे ताली बजाते हुए उसका साथ दे रहे थे। साथ में औरतों की हंसी। कितना सहज लग रहा था सब कुछ। मंदिरा ने सोचा, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये मजदूर निकल पड़ेंगे कहीं और अपना डेरा जमाने। घर पहुंची, चाय का पानी चढ़ाया और पता नहीं क्या हुआ, कई दिनों से बालकनी का बंद दरवाजा खोल दिया। हवा का एक झोंका आया जैसे कह रहा हो, इतने दिनों तक कहां थी तुम। हाथ में डस्टर लेकर मंदिरा ने धूल झाड़ा और कुर्सी बालकनी में डालकर चाय का कप वहीं ले आई। अब भी मजदूरों की मौज मस्ती की आवाज आ रही थी और उनके चूल्हे से उठता धुआं माहौल में अजीब सी गंध भरने लगा। आयुष ट्यूशन से लौटकर सीधे उसके पास आया। ओ मामा, खाने में क्या है? बड़ी जबरदस्त भूख लग रही है। मंदिरा उठकर उसे खाना निकाल कर देने गई। आयुष ने अपने लिए गिलास में पानी भरते हुए कहा,
पता है मॉम, अपने सामने जो बिल्डिंग बन रही है वहां मॉल नहीं एक अस्पताल बन रहा है। अब तो आप खुश है ना?
मंदिरा मुस्कुराई। उसने बालकनी का दरवाजा खोल हवा अंदर आने की इजाजत दे दी है। इससे ज्यादा और क्या होगा।
ये थी जयंती रंगनाथन की लिखी कहानी खोल दो बंद दरवाजा। वाचन स्वर सुखनंदन बिंद्रा का था।